क्लिप नंबर 158, इसमें आप कुरान पाक की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 179 से 180 तक की तिलावत, तर्जुमा और तफसीर कुरान सिरातुल जिनान सुनेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तर्जुमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है।
मा कान अल्लाह लियदर المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم।
तर्जमा, अल्लाह की ये शान नहीं कि मुसलमानों को इस हाल पर छोड़े जिस पर अभी तुम हो, जब तक वो नापाक को पाक से जुदा ना कर दे। और ए आम लोगों, अल्लाह तुम्हें गैब पर मुत्तले नहीं करता, अलबत्ता अल्लाह अपने रसूलों को मुंतखिब फरमा लेता है जिन्हें पसंद फरमाता है। तो तुम अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और अगर तुम ईमान लाओ और मुत्तकी बनो तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है।
मा कान अल्लाह लियज़र المؤمنین علی ما انتم علیہ,
अल्लाह की ये शान नहीं कि मुसलमानों को इस हाल पर छोड़े जिस पर अभी तुम हो। इस आयत का खुलासा यह है कि ऐ सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम, ये हाल नहीं रहेगा कि मुनाफिक को मोमिन मिले जुले रहें, बल्कि अनकरीब अल्लाह अज़्ज़ वजल अपने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए मुसलमानों और मुनाफिकों को जुदा जुदा कर देगा। इस आयत मुबारक का शान नुज़ूल कुछ इस तरह है कि ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की पैदाइश से पहले जब मेरी उम्मत मट्टी की शक्ल में थी, उस वक्त वो मेरे सामने अपनी सूरतों में पेश की गई जैसा कि हजरत आदम अलैहि सलातो व सलाम पर पेश की गई, और मुझे इल्म दिया गया कि कौन मुझ पर ईमान लाएगा और कौन कुफ्र करेगा। ये खबर जब मुनाफिकीन को पहुंची तो उन्होंने इस्तेहज़ा के तौर पर कहा कि मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुमान है कि वो ये जानते हैं कि जो लोग अभी पैदा भी नहीं हुए उनमें से कौन उन पर ईमान लाएगा और कौन कुफ्र करेगा, जबकि हम उनके साथ रहते हैं और वो हमें पहचानते नहीं। इस पर हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए और अल्लाह ताला की हमदो सना के बाद फरमाया, उन लोगों का क्या हाल है जो मेरे इल्म में तान यानी एतराज करते हैं। आज से कयामत तक जो कुछ होने वाला है उसमें से कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका तुम मुझसे सवाल करो और मैं तुम्हें उसकी खबर न दे दूं। हजरत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा सहमी रदी अल्लाह ताला अन्हों ने खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा बाप कौन है? इरशाद फरमाया, हुज़ाफ़ा। फिर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हों ने खड़े होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह अज़्ज़ वजल की रबूबियत पर राजी हुए, इस्लाम के दीन होने पर राजी हुए, कुरान के इमाम व पेशवा होने पर राजी हुए, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राजी हुए, हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुआफी चाहते हैं। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम बाज आओगे? फिर मिंबर से उतर आए। उस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ऐसे सवालात किए गए जो नापसंद थे, जब ज्यादा किए गए तो आप नाराज हो गए। फिर लोगों से फरमाया कि जो चाहो मुझसे पूछ लो। एक शख्स अर्ज गुजार हुआ, मेरा बाप कौन है? इरशाद फरमाया, तुम्हारा बाप हुज़ाफ़ा है। फिर दूसरा आदमी खड़ा होकर अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा बाप कौन है? इरशाद फरमाया, सालिम मौला शैबा है। जब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने आपके चेहरे अनवर की हालत देखी तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह की तरफ तौबा करते हैं। दूसरी रिवायत यूं है कि हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूरज ढलने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और नमाज जुहर पड़ी, फिर मिंबर पर खड़े होकर कयामत का जिक्र किया और बताया कि इसमें बड़े बड़े उमूर हैं। फिर फरमाया, जो किसी चीज के बारे में मुझसे पूछना चाहता हो तो पूछ ले, और तुम मुझसे किसी चीज के बारे में नहीं पूछोगे मगर मैं तुम्हें उसकी जगह बता दूंगा। बस लोग बहुत ज्यादा रोए और आप अलैहिस्सलाम बार बार फरमाते रहे कि मुझसे पूछ लो। हजरत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा सहमी रदी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होकर अर्ज गुजार हुए, मेरा बाप कौन है? इरशाद फरमाया, तुम्हारा बाप हुज़ाफ़ा है। फिर आप अलैहिस्सलाम बार बार फरमाते रहे कि मुझसे पूछ लो। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु घुटनों के बल होकर अर्ज गुजार हुए, हम अल्लाह ताला के रब होने اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر فرمایا ابھی مجھ پر جنت اور جہنم اس دیوار کے گوشے میں پیش کی گئیں، میں نے ایسی بھلی اور بری چیز نہیں دیکھی۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کی تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا گیا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب میں اعتراض کرنا منافقین کا طریقہ ہے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ اے عام لوگوں، اللہ عز و جل تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ عز و جل اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے اور ان برگزیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے، اور سید الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، انہیں سب سے بڑھ کر غیب کا علم عطا فرمایا گیا ہے۔ اس آیت سے اور اس کے سوا بکثرت آیات و احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کے علوم عطا فرمائے، اور غیبوں کا علم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں غیب کا علم نہیں دیا جاتا، تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، جس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس بات کی تصدیق کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ رسولوں کو غیب پر مطلع کیا ہے۔
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔
ترجمہ: اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اسی بال کا توق بنا کر ڈالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے۔ الذین یبخلون، وہ جو بخل کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل کرنے والوں کے بارے میں شدید وعید بیان کی گئی ہے، اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہاں بخل سے زکوٰۃ کا نہ دینا مراد ہے۔